हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 21। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीयद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 21। इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को, जो कि भगवान के मुखारविंद से निकले हुए हैं, जो हमें नारद मुनि बता रहे हैं, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। नारद मुनि कहते हैं, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुं विहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मामां द्रष्टुं विहार्हति अविपक्वकषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां। हन्तास्मिन् जन्मनि भगवान् मां द्रष्टुं मां द्रष्टुं इहार्हति अविपक्कषायाणां दुर्दशोह कुयोगिनां हन्तास्मिन् जन्मनि भगवान् मां द्रष्टुं इहार्हति अविपक्कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां हन्तास्मिन् जन्मनि भगवान् मां द्रष्टुं इहार्हति अविपक्कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां हन्तास्मिन् जन्मनि भगवान् मां द्रष्टुं इहार्हति अविपक्कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुं इहार्हति अविपक्कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुं इहार्हति अविपक्कषायाणां दुर्दशोऽहं कुयोगिनां शब्दोकात् हन्त हे नारद अस्मिन् इस जन्मनि जन्मनि भवान् आप मां नहीं माम मुझको द्रष्टुं देखने के लिए इह यहां अर्हति योग्य हो अविपक्क अप्रौर काश्य कषायाणां धूल अर्थात कलमश दुर्दश देख पाना कठिन है अहम में कुयोगिनां सेवा में अपूर्ण अनुवाद भगवान ने कहा हे नारद खेद है कि तुम इस जीवन काल में अब मुझे नहीं देख पाओगे जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त नहीं है वे मुझे बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान को अत्यंत शुद्ध परम तथा परम सत्य के रूप में वर्णित किया गया है। उनमें भौतिकता लेश मात्र भी नहीं रहती। अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है वह उन तक नहीं पहुंच सकता। भक्ति का शुभारंभ तब होता है जब मनुष्य कम से कम दो भक्त भौतिक गुणों यानी रजो तथा तमोगुण से मुक्त हो जाता है। काम तथा लोभ से मुक्त होना ही इसका लक्षण है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं तथा इंद्रिय तृप्ति की तृष्णा से मुक्त हो जाना चाहिए। प्रकृति का संतुलित गुण सत्वगुण है और समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए इसे सत्वगुण से भी ऊपर उठना होता है। किसी एकांत वन में जाकर भगवान के दर्शन या साक्षात्कार की खोज करना सत्वगुण में आता है। मनुष्य को आध्यात्मिक सिद्धि के लिए वन में जा सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि उसे वहां भगवान का साक्षात्कार दर्शन हो ही जाएगा। उसे समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्म के धरातल पर स्थित होना चाहिए, तभी उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यह है कि मनुष्य वहां जाकर रहे जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। भगवान का मंदिर एक दिव्य स्थान होता है, जबकि वन भौतिक दृष्टि से उत्तम वास स्थान है। नवदीक्षित भक्त को भी भगवान की खोज करने के लिए जंगल जाने के लिए नहीं, अपितु भगवान के विग्रह की पूजा यानी अर्चना करने के लिए कहा जाता है। भगवान की अर्चना से ही भक्ति का शुभ आरंभ होता है। यह वन जाने की उपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे समस्त भौतिक लालसा से मुक्त हैं और वे अपनी स्थिति से ही प्रत्येक स्थान को वैकुंठ में परिणत कर सकते हैं। वे मनुष्यों, देवों, किन्नरों, गंधर्वों, ऋषियों, मुनियों तथा अन्यों को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक लोक से दूसरे लोक में विचरण करते रहते हैं। उन्होंने अपनी दौड़ धूप से ही प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज तथा अन्य कईयों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाया है। अतएव भगवान का शुद्ध भक्त नारद तथा प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है और कीर्तन के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने में अपना पूरा समय लगाता है। ऐसी उपदेश विधि समस्त भौतिक गुणों से भरकर है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरु तु वाचालं पंगु लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीकुरुन्दीनतारणम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 21। आज भगवान नारद जी से वार्तालाप कर रहे हैं। भक्तों, ये कितने अचरज की बात है कि एक नन्हा सा बालक जो एक शूद्र दासी का पुत्र है, जिसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, जिसकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, आज वो भगवान से बात कर रहा है। और इस क्यों कर रहा है, इसने ये कैसे, इसका सौभाग्य इतना कैसे हुआ? केवल और केवल शुद्ध भक्तों का सानिध्य कितना पवित्र कर देता है एक जीव को, कि एक साधारण जीव जो कि अपराधों से युक्त होता है, जिसके कारण वो संसार में आया है, लेकिन एक शुद्ध भक्त का यदि उसे सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो वो भगवान के दर्शन करने के योग्य हो जाता है, भगवान से वार्तालाप करने के योग्य हो जाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। शास्त्र कहता है लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। शास्त्र ने कहा और नारद मुनि ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। थोड़ा सा ही साधु संग उन्हें जीवन में मिला और जिसके कारण वो इतने शुद्ध हो गए, इतने पवित्र हो गए कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए और आज भगवान से बात कर रहे हैं। भगवान उनसे बात कर रहे हैं और वो श्रवण कर रहे हैं भगवान के शब्दों को। इसका अर्थ जानते हैं क्या है? इसका अर्थ यह है कि भगवान को प्राप्त करना तनिक भी कठिन नहीं है। अगर कठिन है तो केवल शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त करना। तो यदि शुद्ध भक्तों का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो भगवान तो यूं फटाफट प्राप्त हो गए। देखो है ना, कितना हैरत की बात है कि बस भक्तों का संग किया और वो इतने पवित्र हो गए कि भगवान को प्राप्त। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी हमेशा कहते थे कि आपकी जीवन की सिद्धि ये नहीं है कि आप सब कुछ त्याग कर जंगल में जाकर बैठ जाओ और वहां पर बैठ के आप अपनी साधना करो, ये कोई सिद्धि नहीं है। सिद्धि क्या है कि आप भक्तों का संग करो, क्योंकि कृष्ण आपको जंगल में जाने से नहीं मिलेंगे। जंगल में जाकर आप हो सकता है हृदय के अंदर फिर भी भौतिक अट्रैक्शन, भौतिक वस्तुओं की इच्छा रह जाए, फिर भगवान कहते हैं उसको मिथ्याचारी सोच्यते, कर्म इंद्रियां ही संयम या आस्ते मनसा संयम। अगर आप कर्म इंद्रियों को रोक कर जंगल में जाकर बैठ जाते हो फिर भी मनसा स्मरण, मन से यदि वही भौतिक वस्तुओं का स्मरण हो रहा है तो मिथ्याचार। वो कोई योगी नहीं है, वो कोई भक्त नहीं है जो हृदय के अंदर भौतिक वस्तुओं की कोई भी छाप, कोई भी इच्छा, कोई भी आकांक्षा बाकी रखकर भले वो बाहरी बाहर से भले वो कितना ही त्यागी अपने आप को दिखाता है, लेकिन हृदय के अंदर यदि कृष्ण प्राप्ति के अतिरिक्त अन्य कोई भी इच्छा है तो वह भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति का मतलब होता है अन्य अभिलाषिता शून्यम। कृष्ण की प्रसन्नता के अतिरिक्त, कृष्ण को प्राप्त करने के अतिरिक्त, कृष्ण को संतुष्ट करने के अतिरिक्त और कोई भी यदि हृदय के अंदर कामना बाकी है तो उसका मतलब है कि अभी तक आपने भक्ति को समझा नहीं। और ये इच्छा शून्यता कैसे प्राप्त होगी? भक्तों का संग प्राप्त करने से। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जिस तरह से एक बीमार होता है, जैसे HIV एड्स का अगर कोई पेशेंट होगा उसके साथ आप रहोगे तो क्या होगा, वो जो बीमारी उसको है, जो डिजीज उसको है, वो आपको भी वही रोग लग जाएगा, है ना। उसी तरह से यदि शुद्ध भक्तों का सानिध्य, शुद्ध भक्ति बहुत बड़ा रोग है, इससे बड़ा रोग कोई हो ही नहीं सकता, इसकी तो कोई संसार में दवाई नहीं है, है ना। दूसरे सारे जो अगर कोई किसी को रोग हो जाता है तो हो सकता है भौतिक किसी ट्रीटमेंट से वो वापस से स्वस्थ हो जाए, लेकिन यदि किसी को कृष्ण के प्रेम का रोग लग जाए तो फिर इस संसार में तो पॉसिबल नहीं है कि किसी भी दवाई से उसका रोग शांत हो सके। ये बहुत खतरनाक बीमारी है और एक ऐसी बीमारी है जिसको प्राप्त करने के लिए हम सबको उत्सुक होना चाहिए कि कहीं से किसी शुद्ध भक्त का सानिध्य प्राप्त हो जाए, कहीं से किसी शुद्ध भक्त के साथ टच हो जाऊं और मुझे भी वो रोग लग जाए। शास्त्र कहता है कि भक्ति में उन्नति करने के लिए आपके पास तीन बहुत बड़े पावर हैं, तीन प्रकार का पावर आपको है। और वो पावर कहाँ से आ रहा है, ऐसे शास्त्र कहता है भक्त पद धूली, भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। भक्त पद धूली अर्थात भक्तों के चरण की जो मट्टी होती है ना, वो अगर आपको प्राप्त हो जाए, भक्तों के चरणों का सानिध्य, भक्तों के चरण को छूने का यदि अधिकार आपको मिल जाए, यह सौभाग्य प्राप्त हो जाए। और भक्त पद जन और भक्त का चरणामृत यदि मिल जाए, भक्त भुक्त अवशेष भक्त के प्रसादम का बचा हुआ कुछ जूठन आपको प्राप्त हो जाए, तीन महाबल, ये तीन आपको इतना पावर प्रदान करेंगे कि भगवान को आपके समक्ष आने पर विवश कर देंगे। तो आज हम नारद मुनि के विषय में पढ़ रहे हैं कि नारद मुनि को भक्तों का सानिध्य प्राप्त हुआ और उसके बाद जब उनकी माता का देहांत हो गया तो वो जंगल में जाकर हर जगह भगवान को खोजने लगे, किसी और वस्तु की और उनका आकर्षण नहीं रह गया था, केवल वो अपनी संतुष्टि के लिए भगवत नाम का स्मरण करने लगे। एक जगह पर बैठ गए और भगवान को स्मरण करते 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 हृदय के अंदर भाव उत्पन्न हुआ और हृदय के अंदर भगवान ने साक्षात्कार दिया। जब भगवान का साक्षात्कार किया तो वो रोमांचित होते, उनका हृदय पवित्र हो गया और उनको इतना आह्लाद हो रहा था, उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे थे और वो भगवान को देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। परंतु सहसा वह भगवान हृदय से अदृश्य हो गए और उनकी व्याकुलता की कोई सीमा न रही। और जब भगवान अदृश्य हो गए तो अपने आप को संभाल न सके, अपनी ओर से भरसक प्रयास किया भगवान को पुनः देखने का, पुनः दर्शन करने का अपने समस्त प्रयास उन्होंने कर लिए, लेकिन उसके बावजूद वो पुनः भगवान का दर्शन नहीं कर पाए और इस प्रकार बहुत असंतुष्ट हो गए, अत्यधिक संतप्त हो थे। और उनकी इस संतप्त को जब भगवान ने देखा तो भगवान भी व्याकुल होते और उनके शोक को दूर करने के लिए भगवान ने उनसे कहा, कल हमने ये पढ़ा था कि गंभीर श्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन इव, के बहुत ही गंभीर वाणी से उन्होंने मुझसे कहा। क्या कहा? वाचा का मतलब होता है कहा, और आज भगवान उनसे क्या कह रहे हैं आज हम श्रवण कर रहे हैं उसके विषय में। भगवान कह रहे हैं, अभी समझो आकाशवाणी हो रही है और नारद मुनि श्रवण कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हंतास्मिन् जन्मनि भवान, हंत हंत का मतलब होता है हे नारद, अस्मिन् जन्मनि भवान, अस्मिन् जन्मनि का मतलब होता है इस जन्म में, भवान मतलब आप। नारद मुनि को भगवान कह रहे हैं, हे नारद इस जन्म में आप, मामां द्रष्टुं मिहारति, मां मतलब नहीं, मां मत, मैंने आपको पहले भी बताया था मां होता है ना मां, उसका मतलब होता है नहीं, कभी नहीं, और मां मतलब मुझको, ठीक है। मामां द्रष्टुं मिहारति, आप इस जन्म में यहाँ पर मां द्रष्टुं मुझे नहीं देख सकोगे, आप इस जन्म में अब मुझे नहीं देख सकोगे, भले कितना ही प्रयास कर लो लेकिन ये जन्म में आप मुझे नहीं देख सकोगे। भगवान उसको ये बता रहे हैं, एक तरह से ये बहुत दुखदायी खबर है ना, कि आप भगवान जिसे आप इतना प्रेम कर रहे हो और वो आपको कह दे कि इस जन्म में तो आपको मैं कभी दिखूंगा नहीं। लेकिन एक भक्त होता है ना, उसकी क्या क्वालिफिकेशन होती है जानते हो? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टु माम अदर्शनम, यदि आप मुझे अपने पैरों से कुचल दो या फिर पिनष्टु माम अदर्शनम, आप अपना दर्शन ना देकर मर्महताम करो तुवा, मेरा मर्महत कर दो, मुझे बहुत धिक्का दो, परंतु यथा तथा वा विद्धा तु लंपट, तुम लंपट हो, तुम स्वतंत्र हो, तो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम्हें बाध्य नहीं किया, तुम्हारी जो इच्छा है मेरे साथ वो सुलूक करो। यथा तथा वा विद्धा तु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः, मेरा केवल एक ही, मैं सिर्फ एक ही संकल्प करता हूँ कि तुम चाहे कैसा भी सलूक करो मेरे साथ, लेकिन मैं सदैव तुम्हारा दास बना रहूंगा, मैं सदैव तुमसे प्रेम करता रहूंगा, मेरी कोई शर्त नहीं है प्रेम करने के बाद कि सदैव मेरे सामने रहो, तुम भी मुझसे प्रेम करो, तुम मेरे साथ केवल अच्छा करो, तुम मेरे साथ कभी बुरा मत करना, तुम मेरे साथ ये मत करना वो मत करना, कोई शर्त नहीं है, तुम मेरे, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। और फिर प्रेमी को मैंने, अपने प्रेमी को यानी तुम्हें एकदम स्वतंत्रता दी है कि तुम जैसा सुलूक चाहो मुझसे करो, क्योंकि प्रेम की एक ही रीत होती है कि मैं कैसे अपने प्रियतम को खुश करूं। यदि तुम मुझे दुख देकर खुशी हो रहे हो तो भले जितना दुख चाहे अपने पैरों से कुचल कर मेरा हृदय तोड़ दो, लेकिन फिर भी मैं सदैव तुम्हें संतुष्ट करने के अतिरिक्त मेरी, और अगर मैं तुम्हारे द्वारा खुद को संतुष्ट करना चाहता हूँ तो फिर वो प्रेम कहाँ है? वह तो फिर से भौतिक इंद्रिय तृप्ति हो गया, है ना? वह तो काम हो गया, क्योंकि निज इंद्रिय प्रीति वांछा तार नाम काम। अगर अपनी इंद्रिय को संतुष्ट करना है, मैं अगर चाहती हूँ कि मेरा प्रेमी, मेरा कृष्ण मेरे सामने हो, तो वो भी मेरे सामने आए और मुझे दर्शन दे। मैं यदि उनका आलिंगन चाहती हूँ तो वो भी मुझे आलिंगन प्राप्त करे, प्रदान करे, और मैं यदि उनका सानिध्य प्राप्त करना चाहती तो वो भी मुझे अपना सानिध्य दे। ये तो फिर इनडायरेक्टली हम इंद्रिय तृप्ति ही करना चाहते हैं। वास्तविक भक्ति जो शास्त्र यहाँ पर जो हमें नारद मुनि के द्वारा भगवान बताना चाह रहे हैं वो क्या है कि वो चाहे जैसा भी सुलूक करें हमारे साथ, वो स्वतंत्र हैं, जैसी इच्छा है वो करते हैं करे, लेकिन हमारा स्वभाव क्या है? दास, और दास को आर्ग्यूमेंट्स करने का अधिकार नहीं होता। हम विलिंगली सर्वेंट भगवान के, लेकिन यहाँ पर ये सोचना, ऐसे डरने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजामि हम। जिस भाव से, जिस हृदय से, जो भी भाव लेकर तुम मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें उसी भाव से स्वीकार करूंगा। यदि हमारी इच्छा होगी कि हम अपना संपूर्ण कृष्ण को सर्वस्व अपना समर्पित कर लें, हमारा सुख, हमारा चैन, हमारे हर तरह की आनंद को हम भगवान के चरणों में समर्पित करके केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहेंगे, तो रिजल्ट में भगवान भी ऐसा ही चाहेंगे कि मैं कैसे अपने इस दास को, अपने इस प्रेमी को मैं कैसे संतुष्ट करूं। भगवान के ऊपर भरोसा होना चाहिए, भगवान के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी निष्ठा होनी चाहिए कि संसार का हर व्यक्ति भी यदि मेरे खिलाफ हो जाए तो भी मैं कृष्ण के चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे मुझे इस संसार का सबसे बड़ा दुख भी प्राप्त हो जाए। और उसी दुख के अंदर भी यदि हम कृष्ण के चरणों को कस के पकड़ेंगे तो वो दुख का समुद्र भी हमारे लिए सुखों की ना सुख सुखी सुखों का समंदर बन जाएगा, क्योंकि कृष्ण जहाँ पर है वहां पर केवल आनंद ही आनंद होगा। कृष्ण से अगर विमुख होकर संसार का समस्त सुख भी प्राप्त हो जाता है तो उस सुखों को क्या करना जिसमें कृष्ण नहीं है। ऐसे गोपियां कहती हैं, छाड़ पड़े उस वैकुंठ को जहाँ कृष्ण प्रेम नहीं हो। अगर वैकुंठ में भी भेज दिया जाए जहाँ पर कोई दुख नहीं है, वैकुंठ का मतलब होता है जैसे ये संसार को कुंठ कहा जाता है, बहुत तकलीफें हैं, बहुत दुख है। ये हमें ये बताया जाता है कि अगर हम इस कुंठ जगत से पार होकर वैकुंठ में जाना चाहते तो भगवान की भक्ति करनी है, और यहाँ पर भगवान की भक्ति करेंगे तो वैकुंठ में चले जाएंगे, लेकिन वैकुंठ में यदि भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवान से प्रेम करने का अवसर नहीं है, तो भले वहाँ पर सुख नहीं है, लेकिन प्रेमी कभी भी ऐसे आनंददायक माहौल, आनंददायक वातावरण में भी संतुष्ट नहीं हो सकता यदि उसका प्रीतम वहाँ पर नहीं होता है। तो यदि प्रीतम संतुष्ट नहीं होता है तो भले जीव की संतुष्टि कृष्ण प्राप्ति में है, लेकिन एक भक्त कभी भगवान को ये नहीं कहता है कि मुझे तुम्हें प्राप्त करना है। भगवान को केवल ऐसे कहता है कि मुझे तुम्हें संतुष्ट करना है। और वास्तव में भक्तों, जब भगवान को एक जीव संतुष्ट कर देता है फिर वह संतुष्ट हो जाता है। एक यही एक माध्यम है कि भगवान को संतुष्ट करके संतुष्ट हुआ जा सकता है। बाकी भौतिक किसी वस्तु को प्राप्त करके, किसी व्यक्ति को प्राप्त करके, किसी भौतिक आनंद को प्राप्त करके संतुष्टि संभव नहीं है, यही शास्त्र बताता है। तो उस संतुष्टि, भगवान को संतुष्ट करने के उस प्रोसेस में यदि कितना ही कठिन हमें परीक्षाएं देनी पड़ती है, हम देखते हैं ऐसा नहीं है कि भक्त बनने के बाद परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, भक्त बनने के बाद हमारे ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा, या फिर ये भगवान के ऊपर ये आरोप लगा दे कि देखो हम तो भक्ति कर रहे हैं फिर हमारे ऊपर इतने सारे कष्ट आते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। यदि हम अपने पिछले जितने भी आचार्य हैं उनके कष्टों को देखें, हरिदास ठाकुर को सिर्फ और सिर्फ महामंत्र जप करने के लिए पीड़ा मिल रही थी। सिर्फ और सिर्फ एक बार भी यदि वो महामंत्र को जप करना छोड़ देता कि ठीक है मैं महामंत्र जप नहीं कर रहा हूँ, तो उनको पीड़ा नहीं मिलती, उनको इतना कष्ट, बाजारों में जाकर उनको कोड़ों से नहीं मारा जाता। हमें तो अपने कर्मों का कष्ट मिल रहा है। आज तो कोई भी आपको भक्ति का कष्ट नहीं दे रहा है। अगर भौतिक कोई हमें कष्ट मिल भी रहा है तो हमने जो जितने भी काले करतूत किए उसके अनुसार हमें ना कष्ट मिल रहा है, और हम आरोप देते हैं कि भाई हम भक्ति करते हैं उसके बावजूद भी मुझे इतना कष्ट मिल रहा है, मुझे इतना दुख मिल रहा है, ये मेरे साथ ऐसा सलूक कर, अरे उनके साथ करके आए हो तो भुगतना पड़ेगा आपको, लेकिन भक्ति के द्वारा अब मस्जिद आपको कुछ भुगतने के लिए नहीं बचेगा। ये तो थोड़ी सी इस जीवन की परीक्षा है। बस इस जीवन की परीक्षा में यदि पास हो गए तो कृष्ण प्राप्ति निश्चित है, और पास इसमें मार्क्स क्या आने चाहिए कि भगवान तुम जैसे खुश रहो, थैंक यू कृष्ण फॉर नाउ एज इट इज, बस मैं आपको थैंक्स कहता हूँ कृष्ण, धन्यवाद इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए। और ये वर्तमान क्षण जैसा भी है मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना बताओ, मेरी सिर्फ इस तरह से सहायता करो कि कोई शुद्ध भक्त का सानिध्य मुझे प्राप्त हो जाए जो मुझे ये बता सके कि हाउ डू आई यूज नाउ एज इट इज इन योर सर्विस एंड प्लेजर लॉर्ड, कि मैं इस प्रेजेंट मोमेंट को, इस क्षण को कैसे आपकी सेवा में और आपकी प्रसन्नता के लिए यूज कर सकूं। बस यदि ये हमें करना आ जाए ना, तो फिर हमारा जीवन सफल हो जाएगा। केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य होगा। कुंती महारानी कहती है, कृष्ण तुम्हारा सानिध्य प्राप्त होता है यदि दुख मिलने पर, तो वो दुख जो है वो करोड़ों सुखों से अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक अच्छा है मेरे लिए। यदि मैं हस्तिनापुर का राज्य कर रही होती हूँ तो उस समय तो तुमसे बहुत दूर हो जाती हूँ, क्योंकि तुम चले जाते हो फिर द्वारिका। लेकिन यदि वन मन भटकती रहती हूँ और उस तरह से पीड़ा मिलती रहती है, तो तुम्हारा सानिध्य प्राप्त होता है और तुम्हारे साथ होने से बड़ा दुख भी मुझे कष्ट नहीं देता बल्कि आनंद प्रदान करता है। और आज नारद मुनि को भगवान कहते हैं, अंतस्मिन् जन्मनि भवान, इस जन्म में आप मामां द्रष्टुम् अहर्हति। अहर्हति का मतलब होता है आप अभी तक योग्य नहीं बने हो, अभी तक चलो थोड़ी सी मेरी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर, मैंने आपको अपना दर्शन दे दिया और अब मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ, बहुत बड़ी कृपा है, थोड़ी कृपा नहीं है, लेकिन अब इस जन्म में दोबारा से मैं आप मेरा साक्षात्कार नहीं कर सकते। और उसका कारण भगवान बताते कि क्यों ऐसा, अविपक्क कषायाणाम, अविपक्क मतलब अप्रौढ़ का मतलब होता है अभी तक परिपक्व नहीं हुए भक्ति में, आप अभी तक वो जो नाम जप करना है आपको, अभी तक साधु संग करना है, अभी और भी आपको अपनी अवस्था को परिपक्व करना है, और थोड़ी सी अभी तक हृदय के अंदर भौतिक मलिनता है, कश्यायाणाम मतलब धूल है, कलमश है, मलिनता है, और दुर्दर्श, इसलिए जब तक हृदय के अंदर से संपूर्ण रजोगुण और तमोगुण का सर्वनाश होकर शुद्ध सत्व में भी नहीं आ जाता है, तब तक के लिए इसको बोला जाता है कषायाणाम, यानी थोड़े से अभी तक कुछ विकार बाकी रहते हैं, और दुर्दर्शो हम, इसलिए मुझे देख पाना कठिन है, कुयोगी नाम का मतलब होता है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, जब तक हृदय के समस्त अनर्थ दूर नहीं हो जाते। भगवान कहते हैं 7.28 में, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो यजन्ते माम ऋणावृता। कि जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का पूरी तरह से सर्वनाश हो जाता है, वे द्वंद्व से, मोह से मुक्त हो जाते हैं और वो संकल्प से मेरी पूजा कर सकते हैं, दृढ़ता से मेरी भक्ति कर सकते हैं। तो नारद मुनि को भगवान कह रहे हैं कि हे नारद, खेद है कि तुम अब इस काल में, इस जीवन काल में, जब तक तुम्हें ये शरीर प्राप्त है, अब मुझे नहीं देख सकते। जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त नहीं हुए हैं, वे मुझे बड़ी मुश्किल से देख पाते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर बताया कि परम तथा परम सत्य जो भगवान है, जिस तरह से उनका भगवद गीता में वर्णन किया गया, भगवान को अर्जुन ने भगवद गीता में बताया 10.11 and 12 में, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। कि आप परम ब्रह्म हो, आप परम सत्य हो, आप परम पवित्र हो, आप परम धाम हो। तो क्योंकि भगवान के अंदर लेश मात्र भी भौतिकता नहीं है, इसीलिए जो व्यक्ति जिसके अंदर जरा सी भी भौतिकता है, रंच मात्र भी यदि भौतिक अनुराग अभी तक, इच्छा कोई भी बाकी है हृदय के अंदर, भौतिक किसी भी वस्तु की इच्छा यदि बाकी है, तो भगवत प्राप्ति, भौतिक अनुराग और भगवत प्राप्ति, जिस तरह से दो तलवार एक मैयान में नहीं रख सकते, उसी तरह हृदय के अंदर भगवान के अतिरिक्त अगर भौतिकता की एक जरा सी रंच भी रह जाएगी, तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं, अतएव जिस व्यक्ति में रंच मात्र भी भौतिक अनुराग रहता है, वह उन तक नहीं पहुंच सकता। तो भगवत प्राप्ति करने से पहले हमें भौतिक अनुराग को समाप्त करना होगा। किंचन अपि न चिंतयन, एक जरा सी चीज के लिए भी यदि हृदय के अंदर थोड़ा सा भी आकर्षण बच जाएगा, तो भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। तो वो कैसे होगा, अब स्टार्ट कैसी होगी ये वाली भक्ति? तो सबसे पहले श्री प्रभुपाद जी बोलते कम से कम दो गुणों से ऊपर आना। अब ये सृष्टि जो है वो तीन गुणों से मिलकर बनी है। भगवान कहते हैं दैवी ये शागुणमयी मम माया दुरथ्या मामे वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। तो ये गुणमयी मेरी जो ये जो देवी प्रकृति है, उसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन मेरी शरण में यदि आ जाओगे तो उसको सरलता से पार कर लोगे। और सबसे पहले क्या करना, श्री प्रभुपाद जी एक मेथड प्रैक्टिकली बता रहे हैं, रजोगुण तथा तमोगुण से तो ऊपर उठना है। रजोगुण का क्या मतलब है, काम इच्छा, कोई भी वासना यदि हृदय के अंदर अगर कोई भी इच्छा आ रही है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए यदि हम उत्सुक हो रहे हैं, तो फिर वो रजोगुण है। और तमोगुण क्या है, लोभ है, तमोगुण है नींद आलस सुस्ती और ये सब। तो यदि इन दोनों से हम ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक हम सत्व में नहीं आ सकते। और सत्व गुण में क्या होता है, शुभारंभ हो रहा है भक्ति का। तो सबसे पहले हमारे हृदय की समस्त इच्छाओं को, हमारी हृदय की समस्त आलस्य को त्याग कर हमें सत्व गुण के स्तर पर आना है। और सत्व गुण में रहकर जब हम साधु संग करते हैं और भगवान के विषय में श्रवण करते हैं और भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, तो वो गुण जो है वो क्या है, शुद्ध सत्व, वो सत्व गुण से भी ऊपर का है। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि समस्त भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए उसे सत्व गुण से भी ऊपर उठना है। तो सत्व गुण में यानी कि भौतिक इच्छा नहीं है और भौतिक आलस्य नहीं है, इन दोनों से ऊपर उठकर हम सत्व में आएंगे। और उस स्टेज पर आने के बाद भी यदि हृदय के अंदर केवल और केवल एक ही आकांक्षा, कृष्ण को प्रसन्न करना है और कोई आकांक्षा नहीं है, तो वो शुद्ध सत्व। और वो कैसे होगा, श्रवणम और कीर्तनम से। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि जैसे हमारे हृदय से हमें पहले रजोगुण और तमोगुण को खत्म करना है, तो कोई ये सोच सकता है कि चलो ठीक है रजोगुण से, क्योंकि भौतिक इच्छाएं हैं और आलस है, ये दोनों खत्म करके मैं जंगल में जाकर भगवान की तपस्या कर रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते कोई ऐसा कर सकता है आध्यात्मिक सिद्धि के लिए, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि इस ऐसा करने से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भौतिक अगर इच्छा नहीं है, लेकिन यदि आप अपने आप को आध्यात्मिक स्टेज पर नहीं आए, आध्यात्मिक स्टेज क्या है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मुझे केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना है। मैं ये देहात्म बुद्धि से जब तक आप ऊपर नहीं उठते हो, उसे समस्त भौतिक आसक्ति से रहित होना चाहिए और आध्यात्मिक धरातल पर आना चाहिए। जब आध्यात्मिक धरातल पर आएगा तब उसे भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा, क्योंकि फिर उसे रिलेशन पता चलेगा ना अपना। जब तक आपका भगवान के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तब तक आप भगवान के साथ संबंध नहीं है, तो फिर उसका सानिध्य प्राप्त होना भी इतना सरल नहीं है। तो भगवत प्राप्ति करने के लिए सबसे पहला क्या बताया यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि आपको भगवान के साथ कोई ना कोई संबंध निर्माण करना है। तो ऐसी जगह पर जाके रहें जहाँ पर कि भगवान की पूजा की जाती है। भगवान का एक मंदिर जो होता है वो इतना दिव्य स्थान होता है। भगवान के मंदिर में जब हम जाते हैं तो भक्तों के दर्शन होते हैं, भक्तों के मुखारविंद से भगवान की कथाओं का श्रवण करने को मिलता है, भगवान की कीर्तन करने को। तो ये इस वास्तव में क्या होगा, ये जो इस तरह से हम भगवान की सानिध्य, भगवान का विग्रह का दर्शन होगा, नेत्रों से हम भगवान के दर्शन करेंगे, कर्णों से भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे, मुख से भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जंगल में जाकर तपस्या करने से ज्यादा बेहतर क्या है कि आप भगवान की विग्रह की सेवा करो। विग्रह के साथ जब हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, उनको प्रसाद खिलाते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो एक रिलेशन हो जाता है। तो जंगल में जाने से श्रील प्रभुपाद जी बोलते ज्यादा बेहतर क्या है कि आप वर्तमान जीवन में यानी कि भगवान की भक्ति करो। इसी से भक्ति का शुभारंभ होता है। विग्रह सेवा, विग्रह की जो अर्चना होती है जिससे हम भगवान के साथ अपने संबंध को निर्माण करते हैं, वो जंगल में जाने से अत्यधिक श्रेष्ठ है। और नारद मुनि को अपने वर्तमान जीवन में वन जाने की आवश्यकता नहीं है। अब श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अब वो उन्हें बता रहे हैं कि आपको जंगल में बैठने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर वन में जाकर तपस्या करना इतना ज्यादा आवश्यक होता तो नारद मुनि अब क्या कर रहे हैं, वो हर जगह पे जाते हैं, प्रचार करते हैं। क्योंकि उनके हृदय में कोई भौतिक लालसा नहीं है, केवल कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य करते हैं। और जहाँ भी जाते हैं ऐसे शुद्ध भक्त जहाँ पर भी होते हैं, वह जगह स्वयं ही वैकुंठ हो जाती है। वह जगह क्योंकि नारद मुनि इतने पवित्र हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताएं कि वो हर किसी को पवित्र कर सकते हैं, चाहे वो देव हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, यक्ष हो, मनुष्य हो, हर किसी को भगवान का भक्त बनाने के लिए एक दूसरे से, एक लोक से दूसरे लोक में वो आते जाते रहते हैं। इसलिए उन्होंने इतने सारे महान भक्त बनाए, जैसे प्रहलाद महाराज उनके भक्त हैं, ध्रुव महाराज उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं, नारद मुनि के शिष्य और वेदव्यास जी भी उनके शिष्य हैं, वाल्मीकि भी उनके शिष्य हैं। तो इतने महान शिष्य उन्होंने बनाए और उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाया। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो नारद और प्रहलाद जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों पर चलता है। क्या क्या पद चिन्हों पर चलता है कि भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, भगवान की महिमा का गायन करता है, अपना पूरा समय इसी में लगाता है कि कैसे मैं भगवान के विषय में अधिक से अधिक जानूं और सबको बताऊं। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि मुझे भगवान के विषय में जानना है, मुझे शास्त्रों का अध्ययन करना है और मुझे जितना भी मेरे गुरु और गौरंग की कृपा से मुझे मेरे लिए पॉसिबल है, मैं सब जीवों को उनके कल्याण के लिए यह सारा उपदेश भगवान का प्रदान करूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा जीव जो है वो भौतिक कल्मश से, भौतिक दुखों से दूर होकर भगवान के चरण चिन्हों को प्राप्त करके आनंद प्राप्त कर सके। यही एकमात्र लक्ष्य होता है एक भक्त के जीवन का। तो इसलिए आज नारद मुनि को भगवान ये कह रहे हैं कि अभी तुम इस जीवन में तो तुम्हें जाकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना है और भी जगह जगह जाकर प्रचार करना है। अब तो तुम्हें इस जन्म में मैं वापस से दिखूंगा नहीं, अभी तुम्हें और भी ज्यादा, जब तक हम अपनी सेवाओं को पूर्ण नहीं कर सकते, कर लेते हैं, जैसे भगवान ने कहा अविपक्क कषायणम, जिनकी सेवा अपूर्ण है और जो समस्त भौतिक कलमशों से पूर्णतया मुक्त नहीं है, दुर्दशो हम कुयोगी नाम, उनके लिए मुझे देखना बड़ा ही कठिन है। तो आप देखते हैं कि नारद मुनि आगे और क्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और उन्हें ये सहजता से जो भगवत प्राप्ति है कि आप जहाँ चाहे जिस लोक में जाकर भगवान के दर्शन किसी भी समय कर सकते हैं, उन्हें ये सारा सौभाग्य कैसे मिला, आगे हम पढ़ेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी साधना को अच्छा कर सकूं। हरे कृष्ण।